This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب کل رات کی مجلس سے لے کر ابھی ابھی مجلس شروع ہونے سے جسٹ بیفور تک مسلسل مومنین کرام کی جانب سے یہی فیڈ بیک آ رہا ہے کہ مولانا ہم لوگ بڑی دور سے یہ مجلسیں سننے آ رہے ہیں دو چار آدمیوں کی وجہ سے آپ اپنا بیان بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں آپ ایسا نہ کریں جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے یہاں کوئی ریسٹرکشن یا پابندی تو ہے نہیں لیڈیز کی جانب سے بھی یہ بات آئی مردوں کی جانب سے بھی یہ بات آئی اور میں یہ عرض کر دوں کہ آج اس محرم کی اس عزا خانے میں میری نائنتھ مجلس ہے آٹھ مجلسیں اب تک ہو چکی ہیں صرف لاسٹ شب جمعہ میں نے 55 منٹ پڑھا ورنہ کسی دن بھی 70 منٹ سے کم میں نے نہیں پڑھا لوگوں نے کہا 45 منٹ اور وہ یہ نہیں کہا کہ ہم کو جلدی ہے جنہوں نے کہا ان کی پوری بات میں آپ تک پہنچا ان کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جلدی بلکہ یہ کہا کہ 45 منٹ سے زیادہ انسان کا دماغ کسی چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ہے پھر وہ بات سنتا ہے نہ یاد رکھتا ہے نہ سمجھ میں آتی ہے یہ ان کا کہنا تھا خیر ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا لیکن اس کے سامنے جتنے لوگ بھی مجھے کل سے اب تک ملے اور اس کے بعد لیڈیز کی جانب سے بھی انہوں نے یہی کہا لیکن میں حیران ہوں کہ 70 منٹ سے کم تو میں نے کسی دن پڑھا ہی نہیں ہلو کہہ رہے مولانا کم سے کم ایک گھنٹہ تو پڑھیے 70 منٹ پڑھ رہا ہوں ہاں آج شب جمعہ دیکھے 9:20 پر مجھے موقع ملا ممبر پہ آنے کا شب جمعہ تھی پھر برادر جعفر لاڈک کا اتنا امپریسو لیکچر پھر ہمارے مہمان اسپیکر نے یہاں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس ویسٹ اور یو کے حوالے سے بہت ساری اہم اہم باتیں آپ تک پیش کی تو اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ آج کی رات میں کوئی بہت ہی لیندھی مجلس پڑھوں بہت شارٹ بھی نہیں کروں گا دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے لیکن یہ یاد دلا دیا جائے کہ آج کی رات شب جمعہ اور یہ شب جمعہ ایک اس طرح سے آئی ہے کہ ایک بار اینیمیز آف اسلام نے پھر ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں سپلٹ کرنے کے لیے یہ دو جو سوسائڈ بوم اٹیک ہوئے اور دونوں کا ٹارگٹ اس وقت مسجد اور امام باڑے میں موجود مومنین کرام ایک مرتبہ پھر دشمن اسلام نے یہ اسٹیپ اٹھا کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا اینیمی اور ہمارا دشمن وہ بہت زیادہ الرٹ بھی ہے اور مسلسل وہ ہمارے خلاف ایکشن میں لگا ہوا لیکن ہماری میجوریٹی سب نہیں لیکن میجوریٹی ابھی بھی سو رہی وہ ابھی بھی ریئلائز نہیں کر رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ڈیوٹی ہونا چاہیے اسپیشلی کربلا کو فالو کرنے والے اور کربلا کا ماتم کرنے والے जिनको तो ये मैसेज दिया गया है कि 61 हिजरी की करबला ओनली 61 हिजरी तक लिमिटेड नहीं है, वो आज भी जारी है, बल्कि वो कयामत तक करबला रहेगी जब हमारे सामने एक हदीस आ रही है। और ये हदीस आगे आयती किताब तारीख आशूरा में हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु व सलाम के रेफरेंस से कोट कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि यह हदीस पढ़ी बहुत जाती, इसका रेफरेंस नहीं आता तो बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हजरत इमाम खुमैनी का ये कोई स्लोगन था। नहीं, आगा आयती ने बाकायदा इसको तारीख आशूरा में चौथे इमाम के हवाले से कोट किया। और ये हदीस जो आपने बहुत सुनी, बल्कि दुनिया के अक्सर इमामबाड़ों में फर्स्ट अशरे में ये बैनर की शक्ल में दीवार पे लगा दी जाती, जहां जहां पे प्रोसेशन या जुलूस निकलते वहां पे ये हदीस प्रोसेशन में आगे आगे लेके चलते। लेकिन ये हदीस जो है इसको कोट करने से पहले लास्ट शबे जुमा का एक जुमला रिपीट करूं, और वो यह है कि एवरी शबे जुमा हम करबला वालों को याद करते हैं। पहले तो अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह कहकर कुरान करीम की उस आयत की तफसीर करते हैं जो फर्स्ट मजलिस से मेरा टॉपिक है, और उसके बाद जब हम ज़ियारते वारिसा को कंप्लीट करते हैं तो हमारी जबान पे एक दुआ आती, एक तमन्ना आती, एक ख्वाहिश आती, हमारी एक विश, फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम। ऐ करबला के शहीदों, ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर, ऐ मुस्लिम इब्ने औसजा, ऐ बुरैर हमदानी, ऐ जॉन गुलाम हबशी, काश हम तुम्हारे साथ होते, तो जो सेक्रीफाइस तुमने दिया है वही सेक्रीफाइस हम भी देकर प्लेजर ऑफ अल्लाह, प्लेजर ऑफ रसूल, प्लेजर ऑफ अहले बैत को हासिल करते, फअफूजा माअकुम, हम कामयाब होते तुम्हारे साथ। एवरी शबे जुमा दुनिया का हर मोमिन जहां पर भी हो ये ज़ियारत पढ़ता, और खुदा मालूम इस वक्त कितने मिलियन करबलाए मोहल्ला में खुद इमाम मजलूम के रोजे पे जरी के बिल्कुल सामने फेस टू फेस खड़े होकर यही जुमला कह रहे होंगे। लेकिन होता यह है कि बहुत सारी चीजें आदमी कभी रूटीन में मांगता चला जाता, रूटीन में कहता चला जाता, और अगर उसकी दुआ पूरी होने लगे तो वह घबरा भी जाता। जैसे किसी मोमिन का वाकया है या जाहिर का वाकया है कि वह जियारत के लिए गया, अब जब जियारत के लिए गया तो बड़ा इमोशनल हो गया, करबला में इमाम हुसैन की जरी के सामने गया, उसने बाकी जो दुआ मांगी तो मांगी, बहुत सारी दुआएं मांगी। करबला तो वो जगह है कि जहां हर दुआ ग्रांटेड, जो दुआ भी मांगे कम, लेकिन साथ में एक दुआ और भी मांग ली उसी इमोशनल हालत में कि मौला बस अब यहां पे आ गया हूं, वापस जाने का दिल नहीं चाहता, मौला अब तो मेरी मौत भी यहीं पे आ जाए, सारी दुआएं मांग ली। फिर वापस आया अपने होटल में या मुसाफिर खाने में, कुछ वेदर का फर्क होगा, कुछ क्लाइमेट चेंज हो गई होगी, कुछ और प्रॉब्लम होगा, वो बीमार पड़ा, तबीयत बहुत खराब हो गई, और इट सीम्स के जैसे ये मरने वाला, तो उसने करबला में इमाम के रोजे की डायरेक्शन में रुख किया और कहा मौला मैंने दुआएं तो बहुत सारी मांगी थी, आपने कबूल की तो बस यही एक दुआ कबूल की थी, अब रूटीन में मांगता चला गया, मौत आने लगी तो घबरा गया कि मौला अगर कोई दुआ ग्रांटेड थी तो यही थी, और भी तो मैंने सेहत मांगी होगी, जो कुछ भी मांगा होगा। तो अब होता यह है कि हम भी एवरी शबे जुमा कह देते हैं फया लैतनी कुंतो माकुम, दिल से कहते हैं, डेप्थ ऑफ हार्ट से कहते हैं, या खाली हमारी जबान, क्योंकि जैसे ही हमने फया लैतनी कहा, हो सकता है, अब देखिए मैं ये ओनली फॉर ए जोक कह रहा हूं कि अब हमने ये जुमला कहा फया लैतनी, और हो सकता है कि हमारे मगज में ये ख्याल आ जाए कि भाई कह दो अब कहां करबला रिपीट हो रही है, अब कहां 61 हिजरा आ रहा है। ऐसा अक्सर होता है ना कि टाइम निकलने के बाद जब किसी ने अपना प्रॉब्लम बताया तो आपने कहा इस वक्त इसका साथ दे दो, इस वक्त कौन सा, टाइम तो निकल गया। मसलन एक आदमी आया और कहने लगा कि लास्ट मंथ मैं बड़े प्रॉब्लम में आज गया था, 1000 पाउंड की मुझे शॉर्टेज थी, बहुत जरूरी थी, मेरी इज्जत खतरे में थी, وہ میں مرنے کے قریب تھا، میں رو رو کے اللہ سے کہہ رہا تھا، او میرا خیر وہ پرابلم سالو ہو گیا۔ اب آپ نے سوچا یہ تو ایک مہینے پہلے کی بات ہے، اس کا پرابلم بھی سالو ہو گیا، ٹائم بھی گزر گیا۔ آپ نے کہا ارے بھائی مجھ سے کیوں نہیں کہا، میں تو اسی لیسٹر میں رہتا ہوں، میرے پاس آتے میں دیتے تھے تمہیں 1000۔ اس نے کہا اچھا ہاں 100 پاؤنڈ کا بھی میرا ایک مسئلہ اور باقی ہے۔ آپ نے کہا اچھا سوری میں تو بھول گیا، اس وقت میں خود بھی ڈیتھ کے عالم میں۔ لیکن جب اس نے 1000 پاؤنڈ کی بات کہی کہ 6 مہینے پہلے چاہیے تھا، آپ نے اس لیے یس کہہ دیا کہ آپ نے کہا اس کا تو ٹائم گزر گیا ہے، خالی زبانی کہہ دو تاکہ اپنے نمبر بن جائیں اس کے سامنے۔ نعوذ باللہ، کسی مومن کے دل میں یہ خیال ہوگا نہیں، لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا فیال ہے تنی کن تو محکم پاپوزا محکم، اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ اب آپ نے سوچا کربلا تو 61 ہجری یعنی 13 سینچریز اگو وہ تو ہو گئی کربلا، اب کہہ دو کہنے میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا، کربلا کا جو وارث ہے، کربلا کا جو جانشین ہے، وہ آگے آیا اور آ کر چوتھے امام نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو کربلا ابھی فنش نہیں ہوئی ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارضن کربلا، کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، دنیا کی ہر زمین کربلا ہے اور دنیا کا ہر دن عاشورے کا دن ہے۔ کربلا خالی عراق کے ایک سٹی کا نام نہیں ہے، لیسٹر بھی کربلا ہے، لندن بھی کربلا ہے، نیو یارک بھی کربلا ہے، ٹورنٹو بھی کربلا ہے، کراچی بھی کربلا ہے، حیدرآباد بھی کربلا ہے، لاہور بھی کربلا۔ کربلا کا جہاد اب تک چل رہا۔ فیا لیتنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ریمائنڈ کرایا جائے کہ تم نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کاش میں کربلا میں ہوتا، تمہاری کربلا تمہارے سٹی میں ہے، یہاں پہ دیکھو حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کی اگینسٹ جا کے جہاد کرنا۔ اس کربلا کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ حسین حق پر ہیں، لیکن خاموش بیٹھے تھے کہ یزید کے سامنے کیسے جائیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس تاج و تخت ہے، حسین کو صحیح سمجھ رہے ہیں، مگر گھر میں جا کے بیٹھ گئے، جو سائلنٹ میجورٹی کی خرابی ہوتی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی حسینی یہی کر رہا ہے تو گویا اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو زیارت وارثہ۔ شب جمعہ میں اکثر ایک آدھ جملہ زیارت وارثہ کا کہتا ہوں، اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی اپنے سٹی میں دیکھے، حق اور باطل ہر جگہ پہ یہ سٹرگل چل رہا، کہیں چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے دو دوستوں میں، کہیں بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کہ جیسے لبنان اور ایران اور عراق کا مسئلہ، اور کہیں یہ بالکل پیک پہ پہنچ جاتا ہے جیسے 61 ہجری میں حسین اور یزید۔ لیکن حق اور باطل کی سٹرگل ہر جگہ ہو رہی ہے، اور ہر جگہ مومن کی وہی ڈیوٹی ہے جو 61 ہجری میں تھی، اور اگر اس نے اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، رائٹ رونگ پتا چل گیا، حق باطل پتا چل گیا، اور پھر بھی خاموش بیٹھ گیا، تو زیارت وارثہ کے تیسرے سنٹینس میں کہیں یہ شامل نہ ہو جائے، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ولمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے آقا کو قتل کیا، سمجھ میں آتا ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہے لعنت کو۔ اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے آقا پہ ظلم کیا، اور اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے قتل نہیں کیا ہے، ظلم بھی نہیں کیا ہے، خالی خاموش اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا اور حسین کا ساتھ نہ دیا، اس پر بھی وہی لعنت آئی ہے جو قتل کرنے والے اور ظلم کرنے والے پہ آئی ہے۔ تو فیا لیتنی جب آپ کہتے ہیں تو ایک بار چوتھا امام کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آج بھی کربلا تمہارے سامنے ہے، کلو ارضن کربلا، وہ آنکھیں کھولو اور اویئرنیس اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہی ایک ریزن ہے، کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اویئرنیس ہمارے اندر نہیں آئی۔ دیکھیں ہماری یہ سب سے بڑی دعا، آج کی رات شب جمعہ، اور ایوری شب جمعہ دعا کی رات، یاد رکھیے اللہ ایک اللہ، دو اللہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ویک کے 6 دن میں کوئی اور اللہ ہو اور 7ویں دن لوکھم پہ کوئی اور اللہ ڈیوٹی پہ آتا ہو، ایک ہی اللہ ہے، وہی سنڈے کا اللہ ہے، وہی شب جمعہ کا اللہ، मगर अल्लाह ने दुआ के लिए एक रूल बनाया कि टाइम और प्लेस के चेंज होने से दुआ की पावर के अंदर फर्क पड़ जाता। देखिए वही अल्लाह है जो लेस्टर की मस्जिद में बैठ के आपकी दुआ सुनता, और यही अल्लाह खाने काबा और मक्के में भी आपकी दुआ सुनता, और यही अल्लाह करबला के और नजफ के अंदर भी आपकी दुआ सुनता। लेकिन यहां पे दुआ इतनी फास्ट कबूल नहीं है जितनी तेजी के साथ खाने काबा में दुआ कबूल, और खाने काबा से ज्यादा करबला और नजफ में दुआ कबूल। अल्लाह एक ही अल्लाह है, मगर प्लेस के चेंज होने से दुआ की पावर बदल जाती, और यही मसला टाइम का मसला। वही एक अल्लाह, संडे की दुआ में वो ताकत नहीं है जो शबे जुमा की दुआ में ताकत, आम देर में वो ताकत नहीं है जो शबे कदर की दुआ में ताकत। तो ये आज की रात दुआ की रात है, हमेशा इस रात की पावर को समझिएगा, इसके अंदर दुआ कीजिएगा, वो दुआ जो पूरा वीक कबूल नहीं हुई आज की रात कबूल हो जाती। मगर दुआ में एक बात याद रखिएगा। अच्छा, पहले तो दुआ के बारे में हमें उसकी एक फिलॉसफी बताई गई। एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि हजरत मूसा ने एक बार अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू मुझे कोई एडवाइस कर, आज मुझे वही नहीं चाहिए जो हजरत मूसा तौरा लेके आते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट वही, वो अपनी जगह, आज मैं एक पर्सनल एडवाइस अपने लिए चाहता हूं। खुदा ने कहा, मूसा अपने लिए क्यों, मैं तुम्हें एक एडवाइस कर रहा हूं शरीयत से हटकर, और ये मेरे तमाम कलमा पढ़ने वालों को पहुंचा दो कि चार चीजों का हमेशा ख्याल करें। नंबर एक, जब तक मेरे खजाने भरे हुए हैं वो अपनी रोजी के बारे में कभी परेशान ना हो। भाई शराब बेचना पड़ेगी, इसके बगैर कारोबार नहीं चलता। हराम गोश्त बेचना पड़ेगा, इसके बगैर मसलन कोई सुपरमार्केट नहीं चलती। नॉन मुस्लिम को सही, लेकिन खिंजीर या सुअर का गोश्त बेचना पड़ेगा, इसके बगैर धंधा नहीं चलता। झूठ बोलना पड़ेगा, फ्रॉड करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर उठाना पड़ेगी जबकि उसको डिजर्व नहीं करते, सारे फेले हराम बार बार हमारे यहां होते हैं, कोई आदमी केयर भी नहीं करता इस बात की। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी ले रहा। भाई कम अज कम आगे सिस्तानी का तो बिल्कुल क्लियर कट मसला है ना कि किसी किस्म का झूठ और फ्रॉड जायज नहीं है, हत्ता ये कि आप गवर्नमेंट चाहे नॉन मुस्लिम क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल ये टॉपिक इतना लंबा है कि आज जहां मैं हार्डली मैं 40 मिनट की तकरीर करने की प्लानिंग कर रहा हूं, खुदा मालूम मेरी प्लानिंग कामयाब हो। रोजाना मैं 40 मिनट की प्लानिंग करता हूं, 70 मिनट की मजलिस हो जाती है। आप मेरे लफ्ज से धोखा खा जाते हैं कि मौलाना ने बहुत शॉर्ट पड़ा। तो खैर मेरी आज की प्लानिंग है, क्योंकि शबे जुमा तो है, आज हमें लैला के उस अकबर का इतना मातम करना कि लैला हमारे मातम को देख के थोड़ा सा उनका गम जो है उसमें हमारा शेयर हो जाए। तो बस एक मुख्तसर सी बात, खुदा ने कहा जब तक मेरे खजाने भरे हैं तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है कि रोजी कहां से आएगी, मैं दूंगा और हलाल तरीके से दूंगा, परेशान होकर हराम की तरफ न जाना। और अब हदीस मैं पूरी पढ़ दूं वरना कल पहला पर्चा ही आएगा कि मौलाना वो बाकी तीन बातें भी बता दीजिए, वो क्यों नहीं बताई आपने। दूसरी बात ये कि जब तक कि तुम्हें 100% कन्फर्म ना हो कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए, किसी दूसरे के ऐप पे निगाह ही ना डालना। वो क्या करता है, उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या गलती है, पहले अपने ऐप देखो, फिर जाके देखना किसी और में ऐप है कि नहीं। और तीसरी बात ये कि जब तक के दूसरों को जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, जब तक कि तुम उन्हें माफ ना करो, उस वक्त तक मेरी बारगाह में माफी मांगने नहीं आना। खुद तो अल्लाह से माफी मांग रहे हो कि खुदा मुझसे गलती हो जाती है, मैं ह्यूमन हूं, ह्यूमन एरर है, मुझे माफ कर दे। और अगर कोई तुमसे गलती कर रहा है उसे खुद माफ करने को तैयार नहीं। जब तक कि तुम अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ ना करो, उस वक्त तक मेरी बारगाह में ना आना तौबा के लिए हाथ फैला कर। वो शबे कदर में हाथ फैले हुए हैं, शबे जुमा हाथ फैले हुए हैं, खाने काबा का खिलाफ पकड़े हुए हैं, करबला में मौला की जरी पकड़े हुए हैं, ये गुनाह माफ हो जाए। पहले दूसरों को माफ करना सीखो, फिर वहां से तुम्हें माफी मिलेगी। और जब तक कि तुम्हें शैतान की डेथ का यकीन ना हो, उस वक्त तक शैतान की तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना बैठना। हर वक्त अलर्ट होके बैठना, वो किसी वक्त भी तुम्हें गुमराह कर सकता है और बहका सकता, और बड़े अजीब तरीके से शैतान बहकाता। जैसे आजकल हमें मर्जियत के मसले पे शैतान ने थोड़ा सा बहकाया है, मगर ये बात अभी नहीं आ रही, अभी तो खाली एक हदीस मैंने पढ़ी थी तो उसको कंप्लीट करने के लिए बात आई थी। खुलासा ये चल रहा कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे पास खजाने भरे हुए, जो दुआ मांगना है मुझसे दुआ मांगो। लेकिन लेकिन हर मोमिन जो दुआ मांगता, हर एक के पास एक लिस्ट होती, 20, 25, 40 दुआएं तो हर एक की हर वक्त आई, और हज और उमरे और जियारत पर जाने वाले पूरी पूरी कॉपीज लेके जाते, नोटबुक भरी होती है उनकी दुआओं से। अल्लाह को कोई वांदा नहीं आ रहा, जितनी उससे दुआ मांगोगे अल्लाह खुश होता। ये हम और आप हैं कि हमने किसी की हेल्प एक बार कर दी, ठीक, दोबारा आया फिर थोड़ी हेल्प कर दी, तीसरी बार आया हम नाराज हो गए कि हमेशा हमने तुमको देखा, हाथ फैला के आ जाते हो, तुम्हें कोई और धंधा नहीं है। अल्लाह खुश होता है जितनी बार उसके पास जाओ। मगर एक तरीका तो ये कि आप रोजाना 40, 50, 100 दुआएं करें, शबे जुमा में 500 दुआएं करें, और एक तरीका ये कि एक दुआ अल्लाह से कर लें जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या चीज ज्यादा अच्छी, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कराना। आज आपने बड़ी मुश्किल से अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व कराया, नेक्स्ट डे फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, फिर 10 दिन दुआ करके प्रॉब्लम सॉल्व कराए, फिर मालूम है 10 दिन के बाद 3 और नए प्रॉब्लम आ गए, पूरा साइकिल, लाइफ साइकिल ही इसमें गुजर गया। ये ज्यादा अच्छी चीज है या ये कि एक बार हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा लो। हर आदमी कहेगा वही ज्यादा अकलमंदी की बात। तो एक आपकी दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जुहूर इमाम की दुआ। एक बार इमाम को जाहिर करवा लीजिए, न सेहत का मसला रहेगा, न रोजी का मसला रहेगा, न दुश्मनों का मसला रहेगा, न बच्चियों की शादी का मसला रहेगा, न सोशल लाइफ के कोई प्रॉब्लम रहेंगे, न रिलीजियस लाइफ के कोई प्रॉब्लम रहेंगे, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे एक बार इमाम आ तो जाए। वो भी हमारी दुआ होती, वो एक दुआ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो इमाम आ जाए तो ना हमें पिशावर से ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि मजलिसे अजा में 10 मोमिनीन शहीद हो गए, ना इराक से ये इत्तला आएगी कि मस्जिद के अंदर इतने मोमिनीन शहीद हो गए। एक बार हुकूमत आ जा, इमाम आके अपनी हुकूमत कायम कर ले, ये एक दुआ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसा कि एक और कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस आपको सुनाता हूं, और वो ये कि एक बार पैगंबर इस्लाम ने यह इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है, पैगंबर कई बार सेवरल टाइम्स या मेनी टाइम्स ये जुमला दोहरा चुके हैं कि मैंने तुम्हें हर वो चीज बता दी, तुम्हें गाइड कर दिया है हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह के क्लोज करती, और तुम्हें हर वो चीज बता दी है जो अल्लाह से तुम्हें दूर करती। पूरी शरीयत मैंने पहुंचा दी है, अल्लाह से करीब करने वाली हर चीज भी रसूल ने बताई, बड़ी बड़ी इबादत हो नमाज और हज जैसी, छोटी छोटी इबादत रास्ते से खाली एक पत्थर हटा दो, और हर वो चीज बताइए जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती है, चाहे वो शराब या फिर वही बात आ गई मेरंगी, मुझे मेरंगू का नहीं पता क्या शराब और ड्रग्स हो, चाहे वो बेहिजाबी हो, चाहे वो दाढ़ी का शेव करना, हर वो बात तुम्हें बताइए जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे, हर वो बात बताइए जो अल्लाह से करीब करे। उसके बाद एक दिन रसूल सवाल करते कि क्या तुम्हें पता कि मा हुआ अफजलुल आमाल, जितने नेक अमल हैं उनमें सबसे फजीलत वाला कौन सा बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, अफजल सुपरलेटिव डिग्री है, जितने अमल मैंने बताए बताओ इनमें सबसे ज्यादा अफजल कौन सा। मजमे से सवाल कर रहे हैं पैगंबर के सामने, मस्जिद नबवी में एक बहुत बड़ा क्राउड है, शायद मैं जरा फास्ट पढ़ रहा हूं, आपके फेसेस से लगता है तो उनको स्लो होना पड़ेगा। खुलासा ये क्या पैगंबर ने सवाल किया और वन बाय वन लोगों से इसका रिप्लाई लिया, हर एक ने रिप्लाई दिया और अपने अपने जितना उसका आईक्यू था उसके एतबार से। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज, पैगंबर ने कहा यकीनन यकीनन बहुत अच्छी इबादत है नमाज, लेकिन जो मैंने बेस्ट कहा है सुपरलेटिव वो नहीं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हज, बहुत अच्छी इबादत है लेकिन मैंने कहा सबसे फजीलत वाली बेस्ट। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह जिहाद, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह पेरेंट्स की खिदमत, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हमेशा सच बोलना। अब यही एक रिवायत पढ़ दूं तो 2 घंटे ले लूं एक एक करके हर चीज, लेकिन इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाजिबात है सब ने बता दी। अब पैगंबर कहते रहे कि नहीं बहुत अच्छी इबादत है, सवाब है इसके अंदर, लेकिन ये बेस्ट नहीं। आखिर लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप बताइए बेस्ट इबादत कौन सी, कहा अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, सबसे फजीलत वाली इबादत है मेरे बेटे का इंतजार, उसका वेट करना, वो जो अवेटेड सेवियर है उसका इंतजार करना। इतनी ऑथेंटिक किताब है, इतनी ऑथेंटिक हदीस है कि शहीद बाकरे सदर जैसे मर्जे ने अपनी एक पूरी बुक द अवेटेड सेवियर इसी हदीस पर बेस करके लिखी है। पैगंबर ने फरमाया सबसे फजीलत वाली इबादत आखिरी इमाम का इंतजार है। अब किसी ने मुझसे कहा मौलाना क्या ये हदीस ऑथेंटिक है? मैंने कहा ऑथेंटिक है। तो कहा कि क्या इंतजार है इमाम नमाज से भी ज्यादा अफजल है? मैंने कहा नमाज से ज्यादा अफजल, हज से ज्यादा अफजल है, हज से ज्यादा अफजल, जिहाद से ज्यादा अफजल है, रोजे से ज्यादा अफजल है, जकात से ज्यादा अफजल है, इन सब से ज्यादा अफजल है। सुनने वाले मोमिन ने कहा कि भाई रसूल की हदीस है, हम क्या कहें, लेकिन दिमाग इसे कबूल नहीं कर रहा। आज तक हमने नमाज की या रोजे की या हज की इतनी फजीलत सुनी। अच्छा एक दो जुमले मैं अपनी तरफ से बढ़ा दूं, आजादारी से ज्यादा अफजल है, आजादारी से ज्यादा अफजल, मोहब्बत अहले बैत से ज्यादा अफजल है, मोहब्बत अहले बैत से ज्यादा अफजल है। अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई वाह भी होगा वो तो खुश हो जाएगा ये ठीक कह रहा है मौलाना, लेकिन मोमिन तो कभी राजी नहीं होगा क्या कह रहे हैं मौलाना। लेकिन अब रीजन सुनिए, पैगंबर ने कहा यह सबसे अफजल अमल है इंतजार इमाम, और हमारे मगज में इसलिए नहीं आता है कि हमको यही पता नहीं इंतजार किसे कहते हैं। हम तो कहते बस ऐसे दीवार से टेक लगा के यूं बैठ जाओ ये इंतजार हो रहा, ये तो वाकन नमाज से अफजल नहीं, रोजे से अफजल नहीं, आजादारी से अफजल नहीं है, बल्कि ये इंतजार ही नहीं है, ये तो मजाक है। यानी अब मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, पैसे भी इंतजार नहीं है इस हदीस में, एक्टिव इंतजार कहा गया, जो रियल इंतजार है वो सबसे अफजल अमल है। यहां पे मैं अक्सर एक छोटी सी हदीस पढ़ देता हूं, मुझे याद है 2 साल पहले शायद पढ़ी हो, फिर सुन लीजिए। और वो ये है कि बनी इसराइल में शख्स, 3 उसके बड़े प्रॉब्लम थे, एक ये कि उसकी मां अंधी थी, दूसरा ये कि उसकी औलाद नहीं थी, तीसरा ये उसके घर में गुर्बत थी, खाने को रोटी नहीं थी। 3 बड़े प्रॉब्लम। मैं इसकी वजाहत भी करता हूं कि औलाद कितना बड़ा मसला, हजरत अली अकबर के हाल में जितने नोहे और मरसी हैं उसमें सब में तस्किरा होता, औलाद की अपनी एक इंपॉर्टेंस। और मां आज 21st सेंचुरी के अंदर शायद मां की इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन वाकान याद रखिएगा कि मां जो है इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत और बरकत, और मां का प्रेजेंस आपके ऊपर अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपकी समझ में वाकान उसकी इंपॉर्टेंस आ जाए। मैं एग्जाम्पल भी देता हूं लेकिन आज नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि वैसे ही टाइम कम है और उसके बाद ये बातें फैल रही है। अभी असल टॉपिक की तरफ तो मैं गया ही नहीं, छोटी सी बात, कभी बाद में बताऊंगा। मां अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, अब वो अंधी। और गुर्बत जो है तो यहां पे आप आ गए जहां गरीब से गरीब आदमी को भी हुकूमत देती, वरना पैगंबर की हदीस है कि कादल फकर यकूना कुफरा, ये गुर्बत आदमी को काफिर तक बना देती है, दज्जाल बहकाएगा ही रोटी के जरिए से। अगर आपने कभी रोटी की शॉर्टेज नहीं देखी तो अल्लाह इसको महफूज रखे, लेकिन जिन इलाकों के अंदर कभी कहत पड़ता है, फेमिनिन आता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, औरतें अपनी इज्जत बेचती हैं, मर्द अपनी औलाद बेच देता, बहुत बड़ी भूख जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम इसके पास, लेकिन ये बहुत दुआ कर रहा। आखिर उस जमाने के नबी ने इसको बुला के कहा कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज, अल्लाह ने ये 3 चीजें तुम्हारे लिए लिखी नहीं थी, तुम्हारी बुक ऑफ फेट में था कि मरते दम तक ही तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, मगर इतना तुमने दुआ मांगी अल्लाह ने चेंज कर दिया है और तुम्हें ऑप्शन दिया है कि इन 3 में से 1 दुआ कबूल कर लेगा। अब ये इट इज अप टू यू, कोई एक दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल करेगा, 3 नहीं, 1, कोई एक। रात भर सोचा सुबह को, देखिए मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ रहा हूं, जिन्होंने इंटरनेट पे मेरी किसी मजलिस में ये पोर्शन सुना उनको पता, आधा घंटा मैं खाली इसमें लगाता हूं, कुछ मजमे को हंसाता हूं, कुछ मजमे को रुलाता हूं, कुछ इधर किसी एग्जिट पे निकल जाता हूं, फिर वापस आता हूं मेन टॉपिक पर, लेकिन टाइम बचाने के लिए इन शॉर्ट। रात भर इस नौजवान ने सोचा, सुबह आके कहा नबी खुदा, पहले रिकन्फर्म किया, कि चले अल्लाह तीन अलग अलग दुआएं नहीं कबूल करेगा, मगर ये तो अल्लाह का कमिटमेंट है, एक दुआ कबूल करेगा। कहा कि हाँ ये अल्लाह का प्रॉमिस। तो कहा कि मेरी दुआ ये कि मेरी मां मेरे बेटे को सोने के यानी वो गोल्डन बाउल के अंदर खाना खाते देखे। या नबी खुदा काउंट कर लीजिए, मैंने एक दुआ मांगी है, दो नहीं मांगी, तीन नहीं मांगी। मेरी मां मेरे बेटे को सोने के प्याले में खाना खाते देखे। काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग में वो एक ही दुआ थी, लेकिन वो एक दुआ बड़ी चालाकी वाली थी, 3-in-1। मेरी मां देखे, आंखें होंगी तो देखेगी ना, बेटे को देखे, बेटा पैदा होगा तब उसको देखेगी ना, सोने के प्याले में खाना खाते देखे, घर में इतने पैसे आएंगे ना तो सोने का प्याला खरीदा जाएगा। या नबी खुदा काउंट कर लीजिए, दुआ एक ही है। बड़ी चालाकी से इसने काम किया, लेकिन ये चालाकी थी इसकी बड़ी मासूमियत वाली। अल्लाह को भी प्यार आ गया, कहा तेरी ये दुआ कबूल होती है। तो कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मैसेज देने के बजाय जरा इनडायरेक्ट दिया जाता। कहा गया कि इमाम का इंतजार बेस्ट इबादत है। वो क्यों कहा गया? इसलिए कि जो एक्चुअल इमाम का इंतजार होता वो ये नहीं है कि आप इस तरह हाथ में हाथ डाल के बैठ गए। अगर आप सही इमाम का इंतजार करेंगे, इसका मतलब है कि इमाम के लिए प्रिपेयर्ड होकर इंतजार करेंगे। यानी जब आप इंतजार करेंगे तो नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज भी करेंगे, खुमस भी देंगे, जहां जिहाद का मौका है जिहाद भी करेंगे, शराब से भी अपने आप को बचाएंगे, बेहिजाबी से भी अपने आप को बचाएंगे, पेरेंट्स की खिदमत भी करेंगे, औलाद की ट्रेनिंग भी करेंगे, आजादारी इमाम में हिस्सा भी लेंगे, मोहब्बत अहले बैत भी अपने दिल में ताजा रखेंगे। अभी आपने ब्रदर जाफर लाडिक के लेक्चर में बहरुल उलूम आगाए बहरुल उलूम का वाकया सुना। खुद इमाम जुलूस में आकर अमामा उतार के अपने जद हुसैन का मातम करते हैं। और उलमा से आपने ये सुना कि इमाम जमाना जियारत नाहिया की शक्ल में आका हुसैन का अपने दादा का नोहा और मरसिया पढ़ते हैं। तो अगर इंतजार है इमाम, सारी इबादतें उसके अंदर आ गई, तो बजाय इसके कि रसूलुल्लाह अलग अलग हर इबादत की इंपॉर्टेंस बताते, एक ऐसी इबादत बता दी अफजलुल आमाल जिसके अंदर सारी इबादतें आके जमा हो गई। उसी तरीके से इस्लाम ने हमसे कहा कि अलग अलग दुआ क्यों कर रहे हो? एक दुआ कर लो कि इमाम जमाना आकर उनकी हुकूमत कायम हो जाए, तुम्हारी सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। मगर आप कहेंगे मौलाना हम ये दुआ तो हमेशा मांगते, अपने लिए दुआ मांगना भूल जाते हैं, अज्जल अल्लाह कभी नहीं भूलते। देखिए, हर नमाज के बाद हम ये दुआ मांगते हैं, हर मजलिस के बाद हम ये दुआ मांगते हैं, हमारी हर रिलीजियस गैदरिंग का एंड जो है वो इस दुआ पे होता। वो यहां से मेरी मजलिस चली थी, वहां भूल गए होंगे। हम ये दुआ तो मांग रहे हैं कि मौला आ जाइए, जाहिर हो जाइए, लेकिन अभी हमने अपने आप को वैसा बनाया ही नहीं है जैसा इमाम चाहते हैं। इमाम हमारी हालत देख रहे हैं कि हम दुनिया में खो गए हैं। अगर अभी इमाम आ जाए तो हम इमाम के भी अगेंस्ट हो जाएंगे। अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। क्या मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है? फया लेतनी कहते हैं, कुल्लू और दिन करबला भूल जाते हैं, 61 हिजरी के मैदान करबला का तस्किरा करते हैं और 1429 हिजरी के लेस्टर और लंदन के करबला को भूल जाते हैं। यहां अपनी ड्यूटीज अंजाम नहीं देते हैं और कहते हैं फया लेतनी अज्जल अल्लाह। हमारे इमाम के आने में भी इसीलिए डिले हो रहा। और याद रखिए, जो इमाम जमाना के जुहूर में डिले करवा रहा, जो इमाम जमाना के जुहूर में डिले करवा रहा, वो अहले बैत का इतना बड़ा दुश्मन बन रहा, चाहे अनइंटेंशनली बन रहा, कि जितने वो करबला वाले जालिम थे, बहुत बड़ा जुमला मैं कह गया, दो जुमले मैंने कहे, पहले दोनों को अलग अलग समझिए। जिसकी वजह से इमाम के जुहूर में डिले है, किसकी वजह से जुहूर में डिले? उस मर्द की वजह से डिले है कि जो दाढ़ी शेव करता है सिर्फ अपनी खुशी के लिए। उस औरत की वजह से डिले है जो अपने सर पर एक स्कार पर एक हिजाब लेने को तैयार नहीं। उस बिजनेसमैन की वजह से डिले है जो हराम छोड़ने को तैयार नहीं। उस यूथ की वजह से डिले है कि जिसको इंटरटेनमेंट के नाम पर म्यूजिक इतनी पसंद है कि वो म्यूजिक छोड़ने को तैयार नहीं। उस औरत की वजह से डिले है कि जो अपने घर के अंदर हर वक्त टेंशन का माहौल क्रिएट करती है, कभी शौहर बीवी का मसला, कभी मां बेटे का मसला। मैं बहुत बड़ा जुमला कह गया, मां बेटे में भी कभी मां का कसूर होता है, उस बेनमाजी की वजह से इमाम के जुहूर में डिले है, जो नाम तो करबला का लेता है लेकिन बरसते तीरों में क्या नमाज पढ़ेगा, एयर कंडीशन और हीटिंग में नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। तो पहला जुमला, जिस जिस की वजह से इमाम के जुहूर में डिले हो रहा है, पूरी लिस्ट सुन लीजिएगा, वो अहले बैत के इतने बड़े दुश्मन हो रहे हैं, चाहे अनइंटेंशनली, ये इंटेंशनली कोई मोमिन दुश्मन नहीं है। क्यों मैंने कहा दुश्मन हो रहे हैं? क्योंकि इमाम के जुहूर में डिले का मतलब क्या है? करबला के जालिमों को सजा और पनिशमेंट में डिले हो रही है। अगर आपकी वजह से, अगर मेरी वजह से इमाम देर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि शिमर जो हुसैन का कातिल है उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह कि हरमुला जो अली असगर का कातिल है उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। इसका मतलब है हसीन इब्ने नमीर जो अकबर के सीने में बर्छी उतार रहा, जिस अकबर का आप मातम कर रहे हैं, उसी अकबर के कातिल को आप टाइम पीरियड दिलवा रहे हैं। इमाम आकर इन सबसे रिवेंज लेंगे, इमाम आकर इन जालिमों को पनिश करेंगे। अगर इमाम अल्लाह की वजह से देर से आ रहे हैं तो ठीक है, फिर हम बिल्कुल इसके अंदर मासूम है, कोई हमारी गलती नहीं। लेकिन अगर हमारे कुछ एक्शंस की वजह से जुहूर में डिले हो रहा, और एक्शन क्या, बखाली हमें दुनिया से मोहब्बत है, ऐशो आराम चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, म्यूजिक छोड़ी नहीं जाएगी, स्कार्फ पहना नहीं जाएगा, अगर हमारी वजह से डिले है तो गोया हमने शिमर को, गोया हमने हरमुला को, गोया हमने अपने जियाद को, जिन्हें परसों हम लानत भी करेंगे ज़ियारत आशूरा में, और इनको चांस भी दिलवा रहे हैं, इनकी पनिशमेंट देर से देर होती जा रही है, ये कौन सी मोहब्बत। तो हमेशा चेक करते रहिए कि इमाम के जुहूर में डिले है अल्लाह के ऑर्डर की वजह से डिले है कि हमारा कोई फॉल्ट है। और शबे जुमा इसी चीज का नाम है और आशूरा इसी चीज का नाम। आशूरे में भी आप इमाम जमाना को याद करते हैं, आपको तो बिल्कुल मेमोराइज है ना कि आशूरे के दिन सलाम भी हमारे यहां नहीं होता। आदमल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन के बाद क्या कहते हैं, वजअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीना बिसारे इमा वली इमाम। अल्लाह हमें उस आर्मी में शामिल करे जो हुसैन के बेटे इमाम जमाना के साथ आएगी और हुसैन का बदला लेगी। तो आशूर के दिन याद करना है, हुसैन का इंतकाम और रिवेंज लेने के लिए आर्मी आने वाली है, और आशूर तो साल में एक दिन आता। एवरी शबे जुमा भी याद करना है, और अगर फर्स्ट अशरे की शबे जुमा आ जाए जो शबे आशूर से इतना नियर हो, कल शबे आशूर, तो देखना है कि जुहूर इमाम में डिले हमारी वजह से तो नहीं है। और जैसा मैंने क्लिस बताई कि हमारी वजह से डिले क्यों होता, और अब एक और वाकया सुन लीजिए कि कभी हमारी वजह से डिले इसलिए भी होता है कि हमारे आमाल में कोई खराबी नहीं है, हमें अपने जमाने के इमाम की मारिफत नहीं है, इसलिए इमाम डिले करते हैं। एक तो होता है कभी हमारे नमाज कजा करना, हराम खाना, बेहिजाब घर से निकलना, म्यूजिक सुनना, मिक्स गैदरिंग को अटेंड करना, जालिम को देखकर उसका हाथ ना पकड़ना, कभी इसलिए डिले हो रहा, और कभी इसलिए डिले हो रहा, जैसे आगाए बहानी का वाकया। चार दिन पहले ब्रदर जाफर लाडक ने मर्जियत और अखबारियत के हवाले से आगाए बैबानी का थोड़ा तस्किरा किया था, लेकिन मजमे में कितने लोग आगाए बैबानी को जानते होंगे, और कितने लोगों को अब याद होगा कि चार दिन पहले इनका तस्किरा आ चुका। भाई याद रखिए कि इस वक्त जिस हालत में हमारी मर्जियत है, जितनी स्ट्रांग, इसमें बहुत बड़ा रोल आगाए बैबानी का, इसीलिए इनका टाइटल है उस्तादुल फुकहा वल मुज्तहिदीन, तमाम मुज्तहिदीन के उस्ताद। दो सेंचुरी पहले जब ब्रिटिश एम्पायर की वो प्लानिंग थी कि शिया से मर्जियत को खत्म किया जाए, जो आज मैंने CIA के रेफरेंस से मैंने पढ़ा, और कई दफा मेरे बेटे की मानिंद महबूब स्पीकर जाफर लाडिक ने उसका हवाला दिया, क्या CIA कहती है मर्जियत खत्म करना, 200 साल पहले ब्रिटिश एम्पायर कहती थी। उस वक्त आगाए बैबहानी वो आलिम थे कि जिन्होंने मर्जियत को सेव किया, प्रोटेक्ट किया, इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद ये जो लास्ट दो सेंचुरी की मर्जियत, सारा क्रेडिट जाता है आगाए बाकिर वहीद बैबहानी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मराजे इन आवर हिस्ट्री। पूरी मर जाएगी इसको इन्होंने बचाया था, और बड़े अजीब अंदाज से बचाया था। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन टाइम नहीं। ये आ गए बाय बहानी। गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज। अंग्रेजी में इस टाइप की कोई प्रोवर्ब है कि अल्लाह व मकरू व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। अल्लाह की अपनी एक प्लानिंग होती है। कभी ऐसा होता है हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना, हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई, हम बैठ के रोते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आए, हमें क्या पता कि आगे चलकर इससे हमको कितना बेनिफिट मिलने वाला। यूसुफ को उनके सगे भाइयों ने, भाई सगे भाई यूसुफ के ने, स्टेप ब्रदर थे लेकिन बाप तो एक था ना, कजिन भी नहीं, एक बाप के बेटे, यूसुफ को उठा के बेच दिया, गुलाम बना दिया, जेल में डलवा दिया। यूसुफ रोते होंगे कि मैं नबी, मैं मासूम, और पता चला कि इसके जरिए से वो आगे चलकर मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने। क्या तरक्की भाई। उसी तरीके से आगाए बैबहानी का भी एक वाकया। ये बहुत बड़े आलिम, यानी तमाम मुश्तहदीन के उस्ताद, जो आज तक 200 सेंचुरी के मुश्तहद, मगर खुद इन्हें भी रियलाइज नहीं कि मैं कितना बड़ा आलिम हूं। एक छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं बैबहान की, नहीं छोटी नहीं, बैबहान की सबसे बड़ी मस्जिद इनका अपना सिटी, अपना टाउन, वहां नमाज पढ़ाते हैं। अपने शहर के अंदर तो बहुत पॉपुलर है, बैबहान से ताल्लुक है, बहुत बड़े वहां के आलिम माने जाते हैं, बहुत क्राउड आता है। एक दिन नमाज मगरिब के टाइम में जरा सा ये लेट हो गए, तब नमाज पढ़ाने के लिए जरा जल्दी करके जा रहे लेकिन 2 मिनट लेट हो गए। अब जो मस्जिद में एंटर हुए तो फर्स्ट टाइम ये देखा कि आम सी ऑर्डिनरी नमाज मगरिब है भाई, शबे कदर हो, शबे जुमा हो, वीकेंड की नमाज मगरिब हो, कोई और इंपॉर्टेंट ओकेजन नहीं, आम रोजाना वाली, जिसमें लेस्टर की मस्जिद भी रोजाना रोती होगी कि मैं बना तो दी गई, नमाजी कहां है, कितनी सफे बनती होंगी रोजाना की नमाज में मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारी दुनिया का जो मैंने सर्वे किया उसकी वजह से मैं कह रहा हूं। अब जो एंटर हुए देखा पूरी मस्जिद जैसा हज का क्राउड होता है, जैसे अभी अरबईन में करबला के अंदर मोमिनीन का क्राउड होगा, ऑर्डिनरी डे में ऑर्डिनरी शहर की मस्जिद फुल भरी हुई है। भाई हमेशा तो ये नमाज से आधा घंटा पहले आके मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ते थे, अब पीछे कितने लोग आ रहे हैं इनको नजर भी नहीं आता, आज फर्स्ट टाइम देखा। अब जो इतना बड़ा मजमा देखा, दिल में ख्याल आ गया मैं कितना बड़ा और पॉपुलर आलिम कि सारा शहर रोज आना मेरे पीछे नमाज पढ़ने आता। लेकिन आलिम थे, फौरन चौंक गए। वो जो हजरत मूसा की वसीयत में चौथी चीज है ना, जब तक शैतान जिंदा है हमेशा अलर्ट रहना, बस फौरन चौंक गए। ये मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, इसका मतलब यह कि नमाज में अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, अपनी पॉपुलरिटी की वजह से पढ़ा रहा हूं। पर कहा कि आज से मैं नमाज ही नहीं पढ़ाऊंगा, और पता है कि अगर मैं अपने सिटी में रहा तो पॉसिबल ही नहीं है, लोग जबरदस्ती नमाज पढ़ाएंगे। मेरे दिल में यह ख्याल क्यों आ गया कि मेरे पीछे बहुत लोग आ गए। एक जाकिर अगर खुश हो गया देखकर, इतना बड़ा मजमा मेरी मजलिस सुन रहा है, मजलिस का सारा जवाब चला गया। मजलिस इमाम के लिए पढ़ना, चाहे एक आदमी बैठ के सुने चाहे 50,000 बैठ के सुने, और शैतान उलमा को जो है ना उनके लिए ये टूल इस्तेमाल करता, तुम बहुत पॉपुलर हो इतने लोग नमाज पढ़ते हैं, तुम बहुत पॉपुलर हो इतने लोग तुम्हारी मजलिस सुनते हैं, तुम बहुत पॉपुलर हो इतने लोग तुम्हारे पास तावीज लेने आते हैं। बंद कर, ये शेख मुर्तजा के वाकये में शायद कल आएगा, छोड़ दीजिए बात लंबी हो रही। इन्होंने कहा कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ाऊंगा, शैतान ने मेरे दिल में पब्लिक का ख्याल डाल दिया है, लेकिन अपने सिटी में अगर रहेंगे तो कैसे पॉसिबल है, लोग जबरदस्ती आके नमाज पढ़वाएंगे। ओवरनाइट सामान पैक किया, सिटी छोड़ के चले गए। अब कहां जाएं, ऐसी जगह जाएं कि जहां पे इनकी कोई वैल्यू ही ना हो। अब उसका एक ही तरीका हो सकता, हौजे में जाएं करबला में, जहां इतने बड़े बड़े मुश्तहदीन हैं, वहां पे छोटे से टाउन के आलिम की क्या अहमियत होगी। जैसे मैं मिसाल दे दूं, दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोगों की हाइट बहुत कम होती है, जैसे कांगो के जंगल में होते हैं वो क्या स्नो व्हाइट है, 7 ड्राफ्ट जो बोने होते हैं। अब अगर कांगो के अंदर हर आदमी 4 फीट का है, वहां कोई आदमी 5 फीट का आ गया तो उसे बहुत ऊंचा माना जाएगा ना, कितना ऊंचा कितना लंबा। अब अगर उसको अपने आप को सेव करना है तो वह नाइजीरिया या सेनेगाल चला जाए जहां 7-7 फीट के लोग होते हैं, वहां ये 5 फीट वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, एक से एक यहां पे घूम रहा है। एक तरीका होता है ना। तो अब ये के कहा कि बैबान में तो मैं सबसे बड़ा आलिम, और किसी सिटी में जाऊंगा वहां करबला चले जाओ जहां सारे मराजे बैठे हुए हैं, भाई कोई बहुत बड़ा भी हमारा आलिम। और आज से 20 साल पहले के नजफ में जाता, क्या कहना नजफ का, आगा खुई वहां पे थे, आगा मोहसिन हकीम वहां पे थे, आगा खुमैनी वहां पे थे, आगा बाकर सदर वहां पे थे, इतने बड़े बड़े महाराजे, और एक नहीं 15-20 थे। तो कहा करबला जाओ, करबला में सारे बड़े बड़े उलमा हैं, वहां मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये दूसरी बात है कि इस तरह से अल्लाह इनको करबला लाना चाहता था। और फिर यहां कुछ अरसे रहे तो जीनियन आलिम थे, चुनाचे इतने बड़े मर्जे बने बाद में। गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज, बैबहान की मस्जिद से करबला के हौजे में इनको पहुंचा दिया, जैसे कोई लिंडी दारुसलाम से कुछ बात ले पर वहां से नजफ में आके नजफ का मर्जे बन जाए। तो अब ये बात का स्टेज, अभी करबला है अननोन आलिम, एक से एक बड़े आलिम मौजूद है। तो एक बहुत ही छोटे से एरिया की छोटी सी मस्जिद इनको मिली, लेस्टर की इस मस्जिद से भी ज्यादा छोटी होगी, और लेकिन लोग आते हैं नमाज पढ़ने। अब ये वहां नमाज पढ़ाना शुरू की इन्होंने। एक दिन हर नमाज के बाद एक हदीस पढ़ते हैं, एक दिन नमाज के बाद इन्होंने इरशादुल कुलूब बुक से एक हदीस पढ़ी, जिसमें छठे इमाम कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के जुहूर के लिए दुआ करते रहो और अपनी गलतियां देखते रहो कि कहीं तुम्हारी कोई फॉल्ट और मिस्टेक तो नहीं है, और फिर अगर नजर आए कि नहीं मेरी कोई मिस्टेक नहीं, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू इमाम्स विल एंड विश, और फिर भी इमाम ना आए, तो सेटिस्फाई हो जाना कि इसमें यकीनन कोई मसलहत है, अल्लाह ने जो फिर इमाम को डिले किया तो जरूर इसमें कोई फायदा। अब ये जो हदीस पढ़ी मजमे ने सुनी, अब मजमे को अभी क्या पता है कितने बड़े आलिम, भाई हदीस सुनी और सारा मजमा प्रोटेस्ट में खड़ा हो गया। एक चीज तो वैसे ही लोगों के जहन में बहुत ज्यादा कि जब इमाम आएंगे तो उलमा उनको अपोज करेंगे, इमाम जो है अपनी तलवार से उलमा को कत्ल करेंगे। तो जो वाकान उलमा से मोहब्बत करते हैं वो हाथ को किस करते हैं, और जो उलमा से दुश्मनी रखते हैं वो उनकी गर्दन को किस करते हैं। ये वो जगह है जहां इमाम की तलवार चलने वाली। अच्छा, ये सुनी सुनाई बात र्यूमर है, किसी ने किताब में नहीं पढ़ा। मैंने तो कहा बताइए, रेफरेंस दीजिए, किस किताब में आपने ये पढ़ा? नहीं सुना है। अब चूंकि उलमा के अगेंस्ट वाली हदीस है तो बड़ी पॉपुलर हो गई, हदीस नहीं भी है तो लोगों ने बिलीव कर लिया, और अपने अगेंस्ट कोई हदीस जाती है तो चाहे ऑथेंटिक भी है तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन इतनी सारी बातें आज मैं नहीं ला सकता हूं, इसलिए कि मेरे हिसाब से तो इस वक्त गम का बयान शुरू हो जाना चाहिए था। बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूं। खुलासा यह कि मजमा खड़ा हो गया, कहने लगा यही वो आलिम है जो इमाम के अगेंस्ट है, ये चाहते हैं कि इमाम आने ना पाए ताकि इनकी चेयर ना छिलने पाए। ये क्या कह रहा है कि अगर इमाम नहीं आ रहे तो समझ लो कि इसमें भी कोई फायदा है। क्या फायदा है? फायदा यही है कि खुमस कलेक्ट करेगा ये आदमी, फायदा यही है कि ये अपनी लीडरशिप चलाएगा। निकालो इसे बाहर, ये इमाम का दुश्मन है। और इस अंदाज से घर से निकाला, मस्जिद से निकाला, कि धक्के देके इन्हें बाहर निकाला, और सारी मस्जिद में शोर है कि 6 महीने से ये आदमी आके नमाज पढ़ा रहा है, हमारी सारी नमाजें गलत हो गई, 6 महीने के कजा नमाज पढ़ना, और ये अपने घर में आके बैठे और बहुत परेशान बैठे। और ये समझिए कि अपने जमाने के आगाह खुई और आगाह सिस्तानी है, बल्कि उनसे भी बड़े, और इस तरह से घर में परेशान आके बैठे कि मैंने क्या किया। एक हदीस छठे इमाम की जो बिल्कुल सही हदीस है वो सुनाई। लोगों ने ये भी नहीं कहा था कि मौलाना जरा एक्सप्लेन करें, खुद ही लोगों ने इतना सख्त किस्म का रिएक्शन। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर नॉकिंग हुई, समझे कि शायद अब लोगों को रियलाइज हुआ है कोई अपनी गलती माफी मांगने आएगा। चुनाचे दरवाजा खोला, दरवाजा जो खोला तो माफी मांगना छोड़िए, जो मस्जिद का ट्रस्टी है, जो मस्जिद की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल है, वो दरवाजे में खड़ा। दो काम उसने किए, पहला काम ये किया इनके चेहरे पे थूका, दूसरा काम ये किया कि जिस मुसल्ले पर ये नमाज पढ़ाते थे ना वो लाके इनके पैरों में फेंका, कहा तुम्हारे जाने के बाद हम मस्जिद को पानी डाल के पाक कर रहे हैं, एक काफिर हमारी मस्जिद में 6 महीने रहा, पता नहीं कहां कहां उसका हाथ लगा, पूरी मस्जिद पाक हो रही है, कारपेट बदला जा रहा, मगर जिस मुसल्ले पर तुम खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे ये तो इतना नजीस हो गया कि पानी से भी पाक नहीं होगा। लो अपना मुसल्ला खुद संभालो, ये कह के एक बार चेहरे पे थूका, पैर पे मुसल्ला फेंका और मेंटल टॉर्चर पहुंचा दिया कि सारी मस्जिद पाक हो रही, और वो चला गया। बहरहाल आलिम हो के मुश्तहिद हो, डिप्रेस तो होगा और परेशान कि चले अगर मैंने गलत बात भी कही उसका इतना सख्त रिएक्शन। कुरान के अंदर है कि कोई तुम पर जुल्म करे बराबर से बदला लो, खबरदार हद से तजावुज ना करने पाओ। और ये आयत आई थी जंगे ओहद के बाद हिंदा और अबू सुफियान के कॉन्टेक्स्ट में। मोमिन की तो और भी ड्यूटी होती कि अगर फर्ज करो मैं गलत था, हदीस भी मैंने गलत पढ़ी थी, तो इतना सख्त रिएक्शन। अभी परेशान है, रो रहे हैं, बैठे हैं, अपने जमाने का सिस्तानी, अपने जमाने का खोई, अपने जमाने का खुमैनी। दो घंटे के बाद फिर दरवाजे पे नॉकिंग हुई, पूछा कौन है? वही ट्रस्टी या वो कमेटी मेंबर, कहता मैं हूं। अब डर गए, घबरा गए, दरवाजा नहीं खोला इन्होंने। क्या अभी तो चेहरे पे थूके गया तो शायद डंडा लाके मेरा सर फाड़ने के लिए आया होगा, दरवाजा नहीं खोले और वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है कि खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। अब तो और घबरा गए कि अब जो दरवाजा तोड़ने आ रहा है तो सर भी जरूर फोड़ेगा, लेकिन अगर नहीं खोला दरवाजा तो और इसका गुस्सा बढ़ेगा। जल्दी से दरवाजा खोल के पीछे हटे, लेकिन वो तो आके इनके पैरों पे गिर गया, रोता जा रहा है, पैरों को बोसा देता जा रहा है, कह रहा है कि अरे सैयद मुझे माफ कर दे, मैं इतना बड़ा गुनाहगार। चेहरे पे थूक के गया, मुसल्ला फेंक कर गया, मस्जिद से धक्के दे के निकाले। अब आगे दो घंटे के बाद कहता है मुझे माफ कर दे। खैर, अब इस्लाम में माफी की तो बहुत अहमियत, स्पेशली अगर साहिब ईमान का मसला। करबला से रिलेटेड एक बात की स्टोरी अभी सुन लीजिए, फिर मैं वाकया कंप्लीट करूं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो करबला के जालिम आएंगे ना, उनमें एक तो हरमुला होगा। चौथे इमाम ने भी मुख्तार के जहाद में पूछा था मिनहाले कूफी से कि सब मारे गए, हरमुला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और एक हसीन इब्ने नमीर, जनाब अली अकबर का कातिल। अब इसकी एक बहुत शॉर्ट स्टोरी सुन लीजिए आप। हजरत अली अकबर का जिक्र है और हरेक को मसायब अकबर भी पता है, और अगर कुछ एक साल में आप थोड़ा बहुत भूल गए तो बरादर जाफर लाडिक ने सब याद दिला दिए। हसीन इब्ने नमीर आफ्टर करबला, यजीद ने इन्हें अपनी आर्मी का डिप्टी चीफ बना के मदीने अटैक के लिए भेजा। जो कमांडर इन चीफ था वो मारा गया, तो ऑर्डर आया कि अब तुम कमांडर इन चीफ हो, अब तुम मक्के पे अटैक करो। जब मक्के पे अटैक किया और खाने काबा को डिमोलिश किया, तो अब शिया सुन्नी मसला नहीं रहा, खाने काबा की रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं। चुनाचे खुद मक्के के अहले सुन्नत वो भी इसके इतने अगेंस्ट हो गए। लेकिन अब यजीद की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ कर नहीं पा रहे। मीन टाइम अभी ये मक्के में था कि डमस्कस में यजीद वासिले जहन्नम हो गए। अभी इसकी आर्मी मक्के में थी, खाने काबा की तीन दीवारें इन्होंने गोलाबारी करके डिमोलिश की थी, चौथी दीवार पे अटैक हो रहा था कि डमस्कस से ये इत्तला आ गई कि यजीद मारा गया, न्यूज पहुंच गई। अब इसकी अपनी आर्मी भी इसके अगेंस्ट थी, खाने काबा पे आप किसी मुसलमान से अटैक कराएं, लेकिन जब तक यजीद जिंदा था तो वो आर्मी मजबूर थी। जैसे ही न्यूज आ गई कि यजीद मारा गया, सब इसके अगेंस्ट हो गए। पूरा मक्का इसके अगेंस्ट है, पूरा मदीना इसके अगेंस्ट है, रौजा रसूल पे अटैक करके आए, और इसकी अपनी आर्मी। अब ये घबरा के जान बचाने के लिए भागा, और उसे डेजर्ट में जा रहा है। मदीने और मक्के के बीच का डेजर्ट तो आपने देखा होगा, जब आप हज और उमरे पे जाते हैं वो 6 घंटे 7 घंटे कोच का सफर, पूरा डेजर्ट। घबरा के भाग रहा, किसी टाउन में जाना नहीं चाहता कि अगर किसी ने पहचान लिया कि मैं मक्का खाने काबा को डिमोलिश करने वाला हूं, लोग मुझे पकड़ के जबा कर देंगे। लेकिन टाउन में जाना नहीं चाहता, डेजर्ट में भूख लग रही और प्यास लग रही। एक वक्त ही आया कि भूख और प्यास से मरने के करीब हो गए। फिर इसने देखा एक छोटा सा नखलिस्तान, अंग्रेजी में गालिबन इसे ओसिस कहते हैं, ओसिस जो भी हो, या थोड़ा सा पानी, कुछ दरख्त होते हैं, और वहां पे कोई काफिला रुका। इसने कहा ये ठीक जगह, इसलिए कि कोई टाउन नहीं है, ये लोग कारवान में है। अब पुराना जमाना है, कोई मोबाइल, कोई फोन, कोई इस टाइप की चीज, और इनको पता भी नहीं होगा कि यजीद का क्या हुआ, मैं कौन हूं। इनके पास जाओ, भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है हसीन इब्ने नमीर। ये उसके अंदर एंटर हो गए। अब पहला जो टेंट नजर आया वहां जाके रिक्वेस्ट करना चाहता है खाने और पानी की, कि टेंट का पर्दा हटा और एक बार इसने देखा तो इसकी जान निकल गई। क्या देखा? मेरे चौथे इमाम टेंट से बाहर आ रहे हैं। अरे दुनिया का हर आदमी मुझे माफ कर सकता है, ये कैसे माफ करेंगे? मक्के पे अटैक किया, ये मक्के के वारिस हैं। यजीद के दरबार में चौथे इमाम ने कहा था ना कि मैं मीना का बेटा हूं, सफा और मरवा का बेटा हूं, खाने काबा का वारिस हूं, ये मोहम्मद मुस्तफा के सक्सेसर है, मदीने पे भी मैंने अटैक किया, सबसे बढ़कर ये कि करबला में इनके बाबा को मैंने शहीद किया और इनके जवान भाई को मैंने शहीद किया। जरा सोचिए चौथे इमाम को अकबर की शहादत पे कितना गम होगा, और कातिले अली अकबर सामने नजर आ रहा है। हसीन इब्ने नमीर घबराया, लेकिन अब क्या करे, भाग भी नहीं सकता, खुद भी भूखा और प्यासा है, उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ, और देख रहा है कि यहां फ्रेश घोड़े बंधे हुए, ना आगे जाने की जगह है ना पीछे हटने की। कि इतने में चौथे इमाम ने जुमला कहा, फिर जरा ये जो था इसकी जान में जान आई। चौथे इमाम ने कहा कि आए अरब मुसाफिर, तू इधर क्यों आ गया, कहीं भूखा और प्यासा तो नहीं है? हाँ, इसने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, जब पहचाना नहीं है तो जल्दी से खाने पीने की बात करो, यहां से भागो। कहा कि हाँ मैं बहुत भूखा हूं। इमाम ने कहा मेरे साथ, एक टेंट में ले जाके बिठा दिया, ठंडा पानी मंगा के इसको पानी पिलाया, ताजा ताजा फ्रेश खाना मंगा के इसको खाना खिलाया। अब ये उठना चाहता है, रोक लिया, कहा तू बहुत थका हुआ लग रहा है, खाना खा के इतनी थकन में खाना और पानी खा के जाएगा, बेहोश हो जाएगा, यहां आराम कर ले, कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कह के उसको लेटा दिया बिस्तर पे, टेंट के बाहर आ गए, टेंट का पर्दा डाल दिया। वाकई ये इतना थका हुआ था, भूखा आदमी और बहुत थका हुआ भी हो, कई दिनों से ट्रैवलिंग में हो, पेट में रोटी जाएगी, नींद आने लगी, सो गए। दो तीन घंटे के बाद सोया, देखा टेंट में कोई नहीं। अब इसने कहा अच्छा चांस से जल्दी से भागो, अगर इन्होंने नहीं पहचाना, इनके किसी गुलाम ने पहचान लिया और बता दिया तो मारा जाऊंगा, और इसमें कोई भी यहां नहीं है, जल्दी अच्छा है निकलो। जल्दी से टेंट का पर्दा हटा के बाहर निकला, आहिस्ता आहिस्ता जाना जा रहा, थोड़ी दूर चला था पीछे से आवाज आ गई चौथे इमाम, आ यार अब कहां जा रहा? अब इसकी जान निकल गई, मुझे क्यों रोक रहे? लेकिन क्या करे, पैदल मुड़ के देखा, चौथे इमाम फरमाते तू अरब के डेजर्ट में जा रहा, तेरा घोड़ा बहुत थक चुका, इस तरह नहीं जा सकेगा, मुझसे एक नया घोड़ा लेके जा जो बिल्कुल फ्रेश है, वो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। अब इतना जो इसने इमाम का बिहेवियर या एटीट्यूड देखा तो अब ये बर्दाश्त ना कर सका, कहा कि फरजंदे रसूल, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके भाई का कातिल हूं जिसके साथ आप इतना मेहरबानी का सुलूक कर रहे। चौथे इमाम ने कहा कि ऐ शख्स, क्या मैं तुझे कभी भूल सकता था? जैसे ही तो मेरे खेमे के करीब आया, मैंने फौरन तुझे पहचान लिया। घबरा के कहा तो फिर मैं आपके भाई का कातिल और आपने मेरी इतनी हेल्प की, खाना पानी बिस्तर आराम और घोड़ा दे रहे हैं। कहा कि हाँ, वो तूने जो हम पे जुल्म किया करबला में वो तेरा मसला, लेकिन हम अहले बैत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप का और भाई का कातिल भी अगर हमारे पास माफी के लिए आए या पनाह के लिए आए तो हम उसके पास उस वक्त बदला ले। नहीं, तू इस वक्त परेशान हाल आया था, तू मुसीबत ज़दा था, इस वक्त उससे बदला लेना या अहले बैत की शान के खिलाफ था, जा इस वक्त यहां से चला जा। वो अपनी जगह के तू अकबर का कातिल है और ये अपनी जगह के हम आले मोहम्मद हैं, अपने जान के प्यासे को भी खाना और पानी दिया करते हैं। ये है आज अली अकबर की शहादत के हवाले से उम्मे लैला का आपसे सवाल, चौथे इमाम का आपसे सवाल, आका हुसैन का आपसे सवाल, कि अकबर का कातिल भी मेरे वारिस सज्जाद के पास आया, परेशान हाल था, मुसीबत ज़दा था, किस अंदाज से उसे उस वक्त माफ किया गया? तो आगा बहबहानी मर्जे हैं, यानी नायब इमाम है, इन्हीं के तो नायब हैं। जैसे उस ट्रस्टी ने आके अपना सर रखा, कहा मुझे माफ कर दी, सारा गुस्सा भूल गए, गुस्सा भी कम था गम ज्यादा था। इसने मेरे चेहरे पे थूका, इसने मेरे इंसल्ट किए, इसने मेरे बाप को बुरा कहा, क्योंकि तो ऐसे लोग जब गुस्से में कहते हैं तुम काफिर, दुश्मन है अहले बैत, हराम की औलाद, सीधा सीधा बापों मां पे अटैक किया। लेकिन अब माफी मांग रहा है, शान यही अहले बैत के मानने वाले की गले से लगा लिया, कहा कि सब खत्म, चैप्टर क्लोज। इतना बता दू कि आखिर ये हुआ क्या दो घंटे में, कि एंटी क्लाइमेक्स, कहा कि हुआ ये कि मैं आपके घर से जब आपके चेहरे पे थूका था फिर मैं आया अपने घर में और सोचने लगा कि 6 महीने की सारी लोगों की कजा नमाज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं कमेटी मेंबर हूं, मैंने आपको अपॉइंट किया, कैसे ये गुनाह माफ कराऊं। देखिए आदमी बड़ा दीनदार और रिलीजियस था, जिहालत का नतीजा था कि इतने बड़े मर्जे की शान में गुस्ताखी। अभी मैं परेशान था और बहुत थक भी गया था, मस्जिद को पाक किया था, कारपेट को चेंज किया था, एक मरतबा मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा जैसे इमाम आ गए हैं, जाहिर हो गए हैं और करबला में। भाई इमाम के आने की न्यूज मिले मोमिन कैसे दौड़ के जाएगा। एक बार मैं दौड़ के गया इमाम के पास, इमाम को मैंने सलाम किया और बैठ गए। अभी मैं बैठा था कि इमाम ने कहा कि ऐ शख्स जा और जाके ये सारा ड्रेस उतार दे, इसलिए कि लिबास हराम का लिबास है और हराम कपड़े पहन के कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इमाम ने उठा दिया, मैं घर गया, ड्रेस मैंने अभी बदला और आके बैठा कि इमाम ने मुझसे आकर कहा कि जाओ और जाकर जो तुम्हारी सवारी है, उस जमाने में घोड़ा था, आज BMW, आज रोल्स रॉयस है, आज मर्सिडीज है, जितनी आपकी हैसियत होगी, हो सकता है अभी किसी गाड़ी का नंबर भी यहां पे आ जाए। तो खुलासा यह है कि इमाम ने कहा ये जो तुम्हारा घोड़ा है ना, ये माले हराम से खरीदा गया है, इसको रखना हराम और गुनाह है, जाके ऑनर को वापिस करो। अब आपसे कहा जाए BMW दे दीजिए, 100 पाउंड में 20 पाउंड खुंस देते हुए मोमिन की जान निकलती। खैर मैं सवारी दे के आके बैठा, इमाम ने कहा और जो तुम्हारा घर है ना, कहा मौला ये मेरा नहीं है, मेरे बाप से मुझे मीरास में मिला। कहा हां तुम्हारे बाप ने अपने भाई का हक मारकर ये घर छीना था, तुम्हारे दादा का घर था जिसमें तुम्हारे चचा का भी हिस्सा था, तुम्हारा बाप ज्यादा स्ट्रांग था, चचा बेचारा वीक था, तुम्हारे बाप ने चचा को किक आउट किया, मकान पे कब्जा कर लिया। कहा मौला ही तो मेरे पैदा होने से पहले की बात है। कहा लेकिन हराम हराम है, घर तुम्हारा नहीं है, सारी फैमिली को और सामान को घर से निकालो और घर जाके ओरिजिनल जो मालिक है उसको हैंड ओवर करो। मैं इमाम के पास आके बैठता हूं, अभी इमाम को सलाम भी नहीं कर पाता हूं, इमाम दौड़ा देते। मैं दौड़ के गया, घर खाली किया, बच्चों को निकाला, सामान निकाला, मालिक को जाके उसकी चाबी दी, आके बैठा। एक बार इमाम ने कहा अच्छा और जो तुम्हारी बीवी है ना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, आज से इसको बीवी ना समझना, जाओ जाके फुला घर में पहुंचा के आ जाओ। मौला अब क्या हो गया? कहा फुला मसले की वजह से तुम्हारी शादी इससे हराम है। बीवी भी हाथ से निकल गई, मैं उसको पहुंचा के वापस आया। इमाम ने तलवार उठाई और कहा ये तुम्हारा बेटा है ना, ये काफिर हो चुका है, फुला फुला इसका अकीदा, जाओ जाके इसको कत्ल करके आओ। अब तो मैंने टेम्पर लूज किया और कहा कि ऐ शख्स तू अपने आप को इमाम कहता, मैं तो तुझे एक सैयद मानने को तैयार नहीं। कपड़े छीने, मकान छीना, सवारी छीनी, बीवी छीनी, एक औलाद बची उसे भी कत्ल करा रहा, ये होती है क्या रसूलजादे की शान? मैं तुझे सैयद भी नहीं मानता हूं। और मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई तो अब मेरी समझ में वो हदीस आ गई जो आपने पढ़ी कि अगर दुआ करने के बाद और प्रिपरेशन के बाद भी इमाम नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि इसमें तुम्हारे हक में बेहतरी है। कुछ लोगों के लिए इमाम का आना बेनिफिट है और कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम ना आए तो वो उनके लिए अच्छा होता है, अगर इमाम आ जाएंगे तो वो इमाम की हुकूमत को अभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही प्रॉब्लम कूफे वालों का था। हुसैन को खत लिख के बुला तो लिया था, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत जोश था, लेकिन अभी अपने आप को चेंज नहीं किया था, अभी इमाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। इमाम को बुला तो लिया है लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि ये भी नहीं पता, लेटर लिख के बुला रहे ये भी नहीं पता इमाम किसे कहते। चुनाचे जब इब्ने ज़ियाद आया, अब तो माशाल्लाह मल्टीमीडिया का जमाना है, कितनी फिल्म्स बन चुकी, खास तौर पर वो जो उस दिन हम यहां इस सेंटर में वो फिल्म का एक क्लिप देख रहे थे कि आपको ये स्टोरीज अच्छी तरह मालूम है कि जब इब्ने ज़ियाद कूफे में एंटर हुआ तो कूफे वाले वेट कर रहे थे इमाम हुसैन का, हमने इनको खत लिख के बुलाया और इब्ने ज़ियाद चेहरे पे नकाब डाल के आया था। कूफे वाले समझे इमाम आ गए हैं, इब्ने ज़ियाद आया है, खाली चेहरे पे नकाब है तो समझे ये इमाम है। सब अपने घरों से निकल आए, कहने लगे मौला हमारा सलाम लीजिए, आका हमारा सलाम लीजिए। और इब्ने ज़ियाद बहुत खुश होकर सबको देख रहा है, डिनाई नहीं कर रहा कि मैं इमाम नहीं हूं, क्योंकि वो तो इस मिशन पे भेजा गया था कि कूफे में जाकर ट्रेस करो हुसैन वाले कौन है, हुसैन को खत लिखने वाले कौन है। अब सबको देख रहा है, खुद ही ये लोग घरों से निकले आ रहे हैं, हर आदमी बढ़ के कह रहा है कि आका आप हमारे खत की वजह से आए हैं ना। वो कहता मौला मैंने भी आपको एक खत लिखा था, आपने मेरा खत तो पढ़ा होगा। जो काम अपने पैलेस में जाकर पूरा एक नेटवर्क स्पाइस का फैलाना पड़ता, फिर पता चलता किस किस ने खत लिखे हैं। अभी वो अपने महल में भी नहीं गया, रास्ते ही में पता चल रहा है, एक एक चेहरा सामने आ रहा है, वो तो बड़ा खुश हो रहा है, डिनाई नहीं कर रहा, यहां तक के महल में पहुंच गए, इन सबको गिरफ्तार करके प्रेशर डाला। लेकिन मसाला वो हिस्ट्री का नहीं है, मसाला ये है कि इमाम को बुलाने वाला इतना बेवकूफ, इतना अहमक, खाली जोश जोश में इमाम को बुला रहा कि डिफ्रेंशिएट भी ना कर सका कि हुसैन कौन है और इब्ने जियाद कौन है, सिर्फ इसलिए कि इब्ने जियाद ने चेहरे पे एक नकाब डाल दी। आखिरी जमाने में शैतान और दज्जाल पता नहीं कितनी नकाबें डाल के हमारे सामने इमाम बन के आएगा। ये हमारी ड्यूटी है कि खाली इमाम को बुलाए नहीं, इतना वेल अवेयर होके बैठे कि पहचान सके कि आने वाला इमाम है कि नहीं है। झूठे मर्जे भी बन रहे हैं, झूठे आलिम भी बन रहे हैं, जिन्नात से, फरिश्तों से और इमाम से मुलाकात का दावा करने वाले भी बन रहे हैं। मोमिन को इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि खाली इसलिए कि उसने अपने आप को छुपा दिया, चेहरा छुपाया, तो हम उसको हुसैन समझ ले। यह गलती आखिरी जमाने में हम और आप करेंगे, हदीसों में आया, और इसी का नाम है कुल्लो अर्जिन करबला। 61 हिजरी के करबला में देखो उन लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की थी। आज लेस्टर को भी करबला समझो, तुम वो मिस्टेक रिपीट ना करना हो, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज हो कि इब्ने जियाद और हुसैन का फर्क पहचान सको। और देखिए ये खत लिखने वाले इतने बेवकूफ भी थे और फिर इतना चेंज भी हुए, इतना चेंज भी हुए कि जिन्होंने हुसैन को खत लिख के बुलाया, हुसैन उनके सामने एक एक करके अपनी सच्चाई के विटनेस पेश कर रहे हैं। कल तक हुसैन को इमाम मानने वाले आज इतना अगेंस्ट हैं, जिसका बहुत ही अहम जुमला वो है जो ब्रादर जाफर लाडिक ने भी पढ़ा, हमारे तमाम उलमा ने लिखा कि हुसैन की आर्मी में डेली अजान देने वाला एक मुअज्जिन था, आशूर की सुबह को हुसैन ने उसको चेंज कर दी, कहा तुम अजान नहीं दोगे, आज मेरा अकबर बेटा अजान देगा। और अकबर के बारे में लोगों को कुछ पता हो कि ना पता हो, ये जरूर पता है कि वो शबीह रसूल है। और जो अकबर की रुख्सत के वक्त आका हुसैन ने जुमला कहा था, खुदा बंदा गवाह रहना इस जालिम कौम पर, मैं अब अपने उस बेटे को तेरी बारगाह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में मेरे नाना की शबीह, खाली सूरत में नहीं, सूरत और सीरत दोनों में मेरे नाना की शबीह। अभी आप मसाइब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, मातम में बहुत ज्यादा लग जाएंगे, मगर याद रखिएगा कि जहां से मजलिस शुरू हुई है वो जुमला कह के मैसेज कंप्लीट करूं फिर गम का बयान शुरू करूं कि अल्लाह वही एक अल्लाह है, लेकिन टाइम और प्लेस की वजह से दुआ की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज तक मुझे कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला जिसने असगर के मसाइब में दुआ मांगी और कबूल ना हुई हो, या अकबर के मसाइब में दुआ मांगी और कबूल ना हुई हो। अभी तो जो रोएंगे सो रोएंगे, लेकिन फिर जब मातम हो रहा होगा, और अभी से मुझे आइडिया है कि आज हमारे जवान अपने जैसे एक जवान का मातम करने के लिए पूरी तरह तैयार होके आए। इतना रो, इतना रो, इतना रो कि हुसैन और लैला दोनों को पता चल जाए कि आकाब के 18 साल के अकबर के गम में अब आपके साथ बराबर से शरीक, और उस वक्त जो आपकी अहम तरीन हाजत है उसे पेश कीजिएगा। हमारे यहां एक रिवायत मशहूर है, काबे को देखकर पहली दुआ मांगो कबूल। मैंने रिवायत नहीं देखी लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अकबर के मसायब और नोहे के दरमियान दुआ मांगो, वो इंशाल्लाह वो दुआ कबूल, इसलिए कि ये शबीह रसूल सूरत में भी है और सीरत में भी। और हुसैन उन कूफे वालों को जो कल तक हुसैन को 40,000 खत लिख के इन्वाइट कर रहे हैं, हुज्जत तमाम कर रहे कि आज तो मेरे इतने अगेंस्ट हो गए कि मेरा अकबर अगर अजान दे रहा जिसका चेहरा कोई देखे तो उसे लगे रसूलुल्लाह अजान दे रहे हैं और उसकी आवाज कोई सुने तो लगे रसूलुल्लाह अजान दे रहे हैं, इसका भी तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। और अकबर तो कर्बला का अजीब शहीद, 100 के करीब कर्बला में शहादतें हुई मगर किसी मुजाहिद के मैदान में जाते वक्त वो वाकयात नहीं पेश आए जो अकबर के लिए पेश आए। कल मैंने कहा था अरब में हुस्न व जमाल में सबसे ज्यादा मशहूर खानदान था खानदान बनू सकीफ, उम्मे लैला का ताल्लुक इसी खानदान से। और ये लैला वो हैं कि जो यजीद की फर्स्ट कजिन भी बनती है, यजीद की फर्स्ट कजिन बनती है लैला। पूरे रिलेशनशिप मैं आमतौर पे पढ़ता हूं कहीं और मजलिस हो, लेकिन आज बहुत टाइम गुजर गया। जब उम्मे लैला शादी के काबिल हुई थी तो उनके हुस्न जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में जवाना ने जन्नत के सरदार हुसैन के अलावा और कोई ना था। हुसैन की पहली वाइफ शहरबानो का इंतकाल हो चुका था, मौला अली अपने बेटे हुसैन के लिए दूसरी बीवी ढूंढ रहे थे और लैला से शादी के बाद पहले बेटी हुई जो फातिमा कुबरा कहलाती, उनकी मां भी लैला और फिर बेटा हुआ जो अली उल अकबर कहलाता। गरचे एज में चौथे इमाम ज्यादा लेकिन कर्बला में दो अली शहीद हुए हैं उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाता ये बड़ा अली है और छोटा अली। हुसैन की औलादों में नहीं, कर्बला के शहीदों में बड़ा अली ये है छोटा अली ये। ये हिस्ट्री में लिखा तो नहीं लेकिन हर आदमी जानता है मां का दिल कि जैसे जैसे अकबर शादी की उम्र को पहुंच रहा कितनी तमन्ना और कितना अरमान होगा उम्मे लैला को। 18वां साल शुरू हुआ तो मकातिल में लिखा है कि लैला ने मदीने में कह भी दिया था कि मेरा बेटा 18वां साल कंप्लीट करके 19वें में दाखिल होगा तो मैं अपने बेटे अकबर की बड़ी शान के साथ शादी करूंगी, दुनिया देखेगी रसूल के रसूल जादे की शादी कैसी होती है। और सारे मदीने की औरतों ने उम्मे लैला से वादा लिया था शहजादी जब ये शादी होगी तो हमें जरूर दावत दीजिएगा वरना हम आपसे कंप्लेन करेंगे, शबीए रसूल की शादी है और आप हमें ना बुलाएं। लैला ने मुस्कुरा मुस्कुरा के हरेक से कहा था मैं तुम में से हरेक को बुलाऊंगी, मेरे चांद जैसे अकबर की शहादत, मेरे चांद जैसे अकबर की शादी बगैर तुम्हारे नहीं होगी। अकबर वो है कि अपने तो अपने गैर उसको देख के रोते हैं, दोस्त तो दोस्त दुश्मन की आंखों में आंसू आते हैं। कर्बला के वाकये के बाद जब सैदानियों का लुटा हुआ काफिला कूफा और शाम जा रहा था तो शाम में कई जगह ईसाइयों के बस्तियां थी, एक ऐसे ही टाउन से ये काफिला जा रहा जहां पूरे क्रिश्चियन थे। उनको तो बस ऑर्डर आया यजीद का मकान की छत पे औरतें बैठे मर्द सड़क पे खड़े और तमाशा देखे। ईसाई औरतें मकान की छत पे बैठी हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मगर एक बार देखा कि नैजों पे कटे हुए सर आ रहे हैं, एक एक सर को वो ईसाई औरतें देख रही हैं। अकबर का सर नजर आया ईसाई औरतों की जबान पे बेख्तियार आ गया अल्लाह करे इस जवान की मां मर चुकी हो। वो क्रिश्चियन औरतें पुकार उठी अल्लाह करे इस जवान की मां मर चुकी हो। उम्मे लैला एक ऊंट पर बालों से चेहरा छुपाए बैठी थी, सर उठा लिया और कहा कि अरे तुम्हें इस जवान की मां से क्या दुश्मनी है कि उसकी मौत की दुआ मांग रही हो। वो नॉन मुस्लिम औरतें घबरा के कहती है दुश्मनी नहीं है, हम तो सोचते हैं हम गैर हैं हम नॉन मुस्लिम हैं, हमसे 18 साल के इस जवान का कटासर नहीं देखा जा रहा, अरे अगर इसकी मां जिंदा होगी तो किस दिल के साथ अपने लाल का कटासर देखा होगा। मगर आए औरतों तुम नॉन मुस्लिम हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि लैला किसे कहते हैं। यकीनन लैला को अकबर से बड़ी मोहब्बत थी लेकिन जब दीन और इस्लाम की बात आती है लैला हर कुर्बानी देने को तैयार है। चुनांचे तारीखों में लिखा है कि कर्बला में जब असाबे इमाम शहीद हो गए और जवाना ने बनी हाशिम की बारी आई, सबसे पहले हुसैन ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर बेटा पहले मैं तेरा लाशा उठाऊंगा, भाई की औलाद बाद में जाएगी, बहन की औलाद बाद में जाएगी, पहला लाशा हुसैन की अकबर का उठेगा, जाओ मख्तल की जाने। अली अकबर की जियारत का पहला जुमला अस्सलामु अलैका या अव्वला कतील मिन नस्ले खैरे सलील, ऐ नस्ले रसूल के पहले शहीद आपको हमारा सलाम। अकबर पहला शहीद है नस्ले बनी हाशिम का। अकबर ने सुना, घोड़े पे सवार हुए, कहा बाबा मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि मख्तल में जाऊं। हुसैन ने कहा लेकिन अकबर इस तरह नहीं जाओगे, पहले घर वालों को खुदा हाफिज कह के आ जाओ। आजादारों 30,000 के फौज से 3 दिन के प्यासे अकबर का लड़ना आसान है, मगर बहनों और फुफियों और मां से ये कहना आप अकबर का लाशा देखने को तैयार हो जाओ। एक एक बीबी अकबर का चेहरा देख के जीती थी, ये शबीह रसूल है। बहनों को अकबर से जितनी मोहब्बत थी, हर हर फुफी को अकबर से जितनी मोहब्बत थी, लेकिन सबसे पहला ख्याल अकबर के दिल में ये है कि अरे मैं अपनी माँ से कैसे कहूँ अम्मा 18 साल लाशा देखने को तैयार हो जाओ। और एक बार परेशानी के आलम में माँ के पास गए, माँ को कैसे समझाऊं, एक अजीब मंजर देखा, मुसल्ला बिछा के जा नमाज बिठा के लैला उस पर किबला रुख बैठी। अकबर घबरा गए, अम्मा जोहरैन की नमाज पढ़ी जा चुकी है, मगरिब में बहुत देर है, ये कौन सी नमाज की आपने तैयारी कर रही है? कहा अकबर बेटा मैंने एक मन्नत मानी है उसकी नमाज के लिए बैठी, और मन्नत यह है कि बेटा इस जालिम से मेरा रिश्ता है, अगर मैदान में तू पीछे हट गया तो लोग कहेंगे लैला ने अपने बेटे को पीछे हटा लिया, मैंने मन्नत मानी है जितने जल्द मेरे अकबर का लाशा आएगा मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। आजादारो लैला तैयार है अकबर का लाशा देखने के लिए। ये करबला की बीवियां हैं, ये मौत से नहीं डर रही हैं, अपनी औलाद को बचाना नहीं चाहती हैं। कहा मैं तो मन्नत करके बैठी हूँ अकबर का लाशा आए और मैं नमाज पढ़ूं। अकबर ने मुस्कुरा के कहा अम्मा मैं तो इतना परेशान था आपको कैसे खुदा हाफिज कहूं, आपने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, आपका अकबर इसी काम के लिए आया है, खुदा हाफिज। और लैला कहती है बेटा जरा जल्दी जिहाद करना ताकि मैं अपनी मन्नत को जल्दी से बढ़ाऊं। अब अकबर माँ के खेमे से निकले, माँ तो जो मोहब्बत करती थी तो करती थी, हाय लेकिन जैनब की मोहब्बत अकबर से। हुसैन का बेटा है मगर जैनब ने अपना बेटा समझ के पाला है, और अकबर भी ज्यादा वक्त जैनब के पास रहते हैं कम वक्त हुसैन के पास। फूफी को कैसे कहूं हम फूफी जैनब आप मेरे लाशे को देखने को तैयार हो जाएं। इराक के एक बहुत बड़े खतीब है अब्दुल रजाक अल मकरम, उनकी मकबूल हुसैन में ये रिवायत मौजूद है। अकबर ने एक अजीब तरीका इख्तियार किया, जैनब के खेमे में आए, जैनब जमीन पे बैठी हैं। अकबर आए फूफी की गोद में सर रख के लेट गए, जैनब ने भी अकबर के बालों में उंगलियों से कंघी शुरू की, कहा अकबर इस वक्त जिहाद हो रहा है यहां क्यों आए? कहा फूफी अम्मा एक मसला मुझे परेशान कर रहा है, आपसे उसका सवाल लेने आया हूं। जैनब ने कहा बेटा ये मसले का वक्त नहीं है। कहा कि नहीं फूफी अम्मा मैंने जब पूछा आपसे पूछा है, एक मसले का जवाब बता दीजिए, आपका रुतबा ज्यादा बड़ा है कि मेरी दादी फातिमा जहरा का रुतबा ज्यादा बड़ा? अरे माँ का नाम सुनना था, जैनब बर्दाश्त ना कर सकी, घबरा के जमीन से खड़ी हो गई। अकबर तू तो बड़ा समझदार है, ये कैसा बच्चों जैसा सवाल कर दिया? अरे कहाँ शहजादी फातिमा, मैं तो उनकी एक कनीज हूँ। अकबर ने कहा बस फूफी अम्मा अगर दादी फातिमा का रुतबा ज्यादा बड़ा है ना तो एक काम करें, आज दादी फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दें। जैनब ने हैरत से अकबर को देखा, अकबर बेटा अगर कोई और मुझे बताता तू मख्तल जा रहा है तेरी फूफी जिंदा न रहती, मगर इस तरह से तूने कहा अच्छा जा, मैंने शहजादी फातिमा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान किया, जा बेटा खुदा हाफिज। लश्कर यजीद का रिपोर्टर ये कहता है
कि करबला में बनी हाशिम के जो जवान थे सब रुख्सत हासिल करके आए, मगर इतनी देर कभी ना लगी जो अकबर को लगी थी। मैं देख रहा था खेमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है, ऐसा लगता है अकबर बाहर आना चाहते हैं। कोई बहन आके लिपट जाती है, भैया एक मरतबा और अपना चेहरा दिखा दो। कोई फूफी आके लिपट जाती है, अकबर बेटा तेरी फूफी तेरी जियारत एक बार और कर ले। आखिर हुसैन आए और कहा, बीबियों मेरे अकबर का रास्ता न रोको, जिहाद में देर हो रही है। अब सारी सैदानियां हटी। मेरे मरहूम उस्ताद कहते थे, अकबर सारी सैदानियां हटी, अकबर बाहर निकलना चाहते हैं, एक आवाज आई, अकबर सबसे मिलनी है, क्या हमसे ना मिलोगे? अकबर ने मुड़के देखा, मेरा बीमार इमाम सैयदो साजिदीन अपने बिस्तर पे कमर पकड़ के बैठा, भैया अकबर हमसे तो मिलते जाओ। भाई ने भाई के गले में बाहें डाल दी, खुदा मालूम क्या बातें हुई। अकबर बाहर आए, बाबा को सलाम किया, घोड़े पर बैठे, घोड़े पे बैठ के मख्तल की जानिब चले। अकबर का जिहाद तो इंग्लिश लेक्चर में आप सुन चुके हैं, मैं खाली रुख्सती और शहादत पढ़ता हूँ। अकबर घोड़े पे बैठ के चले, अभी थोड़ी दूर गए थे, अकबर को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो देखा मेरा बूढ़ा बाबा पैदल मेरे घोड़े के पीछे आ रहा है। जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है, हुसैन भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे। अकबर ने घोड़ा रोक दिया, कहा बाबा आप मेरे पीछे क्यों जहमत कर रहे हैं? अजीब तारीखी जुमला हुसैन ने कहा, अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं पता बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। आजादारो जरा सोचो मेरे आका के दिल पे क्या गुजर रही है। अकबर ने हाथ जोड़े, लेकिन बाबा अगर आप मेरे घोड़े के पीछे चले तो मैं तो नहीं जा सकता मख्तल में। बाबा आप रुक जाइए। हुसैन ने कहा, अच्छा बेटा मैं तेरी बात मानता हूँ, अब बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मसाइब को। अकबर दोबारा घोड़े पे बैठे, करीब में एक टीला था, हुसैन टीले पे जाके बैठ गए, जैनब खेमे के पर्दे पे आके खड़ी हो गई, लैला मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। अकबर की निगाहें फौज पर है, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, जैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें जैनब पर हैं। थोड़ी देर गुजरी, अकबर का जिहाद पूरा हुआ, अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, जैनब दरे खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्रन लिल्लाह मेरी कमाई तेरे दीन के काम आई। और हुसैन गिरे समले खड़े हुए। अदादारों थोड़ी देर के लिए आपके आका की आंखें आई साइड चली गई, हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। एक मर्तबा का, अकबर बेटा मुझे पुकारो, मैं आवाज सुन के तेरे करीब आना चाहता हूँ। अकबर ने आवाज दी, इलैया इलैया, बाबा यहाँ आइए मैं यहाँ हूँ। हाय मेरा 57 साल का बूढ़ा इमाम, एक बार करबला के जंगल में रास्ता बनाते हुए जवान के लाशे के करीब जा रहा है। अकबर के करीब पहुँचे, खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की यह हालत न देखा है। अकबर के दोनों हाथ कलेजे पर हैं, अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन ने अकबर को देखा, एक मर्तबा अकबर को उठाना चाहा ताकि खेमे तक ले जाएं, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ पैरों के नीचे रखा। मेरे आका ने उठाना चाहा, अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान, आका के हाथ कांपे, अकबर ना उठाए गए। 3 बार कोशिश की, अकबर ना उठाए गए। हुसैन ने कहा, अकबर तुम भी तो मेरी मदद करो। अकबर ने कहा, बाबा मैं क्या करूं? कहा, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो तो फिर मैं तुम्हें आसानी से उठाऊंगा। अकबर ने बाप की बात सुनी, एक हाथ कलेजे से हटा के बाप की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा, अकबर दूसरा हाथ भी गर्दन में डालो। कहा, बाबा दूसरा हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता हूँ, बाबा मैं कलेजे से दूसरा हाथ हटाना नहीं चाहता हूँ। वो हुसैन ने सुना, हुसैन पीछे हट गए। अकबर, ये तूने क्या कह दिया? क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कितना साबिर है? ये दूसरा हाथ भी हटा, हुसैन देखे तो सही तेरे कलेजे में क्या है। बाप का हुक्म आ गया, अकबर ने दूसरा हाथ हटाया, अल्लाह अल्लाह जवान के कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आ रहा है। हुसैन ने कहा अकबर बस इतनी सी बात, ये पर्ची मैं निकालता हूँ। ये कह के हुसैन अकबर के करीब दो जानू बैठे, पर्ची पे हाथ रखा। मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ या रसूल अल्लाह करबला के मैदान में जल्दी से आइए, अकेले नहीं आइएगा, इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइएगा। इब्राहिम जरा आके देखिए, ये बूढ़ा बाप है जवान बेटा है, बाप की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, किस तरह पर्ची निकाल रहे हैं। लेकिन इतना मुझे यकीन है हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, मगर पलट के नजफ को देखा होगा, कहा होगा या अली मदद, बाबा हर एक की मदद करते हो, आज अपने हुसैन की मदद करो, जवान के सीने से पर्ची निकालना। आखिरी दो जुमले, अकबर ने देखा बाबा ने बर्ची का फल हिलाया, बर्ची को हिलाया तो वो कलेजा हिला जिसमें बर्ची थी, कलेजा हिला तो अकबर का जिसम हिला तो जमीन करबला हिली, खेमे हिले, पर्दे हिले, जैनब की आवाज आई, भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन आ रही है। हुसैन ने अकबर का लाशा छोड़ दिया, जैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पे मेरा अकबर कुर्बान। लेकिन मौला शामे आके देखिए, यही जैनब है जिसके पर्दे के लिए अकबर कुर्बान। वो चादर छिनी, वो खेमे जले, वो अकबरा फातिमा जहरा को उनके लाल पोते का पुरसा, लैला को उनके लाल का पुरसा, खड़े हो जाइए, वो ताबूत आ गया। वो अकबरा आका हुसैन, शहजादी लैला आप अपने बेटी की शादी ना कर सकी, हम शिया अरमान पूरा करने में आपके साथ शरीक है। वाह अकबरा,
जवानी में मरने की हसरत है किसी, गरीबी में कांधों पे मैयत है किसी, खुदा दुश्मनों सूरज। حسرت کو خون میں ڈوب رہا ہے، ماں سے بھی کیوں خفا ہو، کچھ تو ذرا قسمت نے یہ دکھایا داغے جوان بیٹا، اب جی کے کیا کروں میں، او نوجوان اکبر، او میرے اکبر آجا، زخمے دلہا تجھے بنا لو، مہندی تجھے لگا لو، قسمت کی کم نصیبی او نوجوان اکبر، او میرے اکبر آجا، زخمے سے 18 سال پالا، ماں کی محنتوں پہ تجھ کو رحم نہ آیا، جنگل میں سو گئے ہو او نوجوان اکبر، او میرے
زخمِ جگر بتا جا۔ یا حسین،